फरजाम साहब है?
जी जी आप बात करेंगी उनसे?
नहीं बात नहीं करनी, बस उनसे कहें कि जल्दी आ जाए।
जी जरूर जी। तो फरजाम साहब वो कह रही हैं कि आप जल्दी से आ जाएं, ठीक है? खुदा हाफिज। अतिया साहिबा उन्होंने कहा है कि आप इंतजार करें, वो लेने आ रहे हैं। शहीन बहन माफ कीजिएगा, अगर फिर से बेचैन हो गई तो मुझे बुला लेना।
ठीक है बहन।
डॉक्टर साहिबा खुदा आपको सब्र दे, अगर हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा।
ठीक है शुक्रिया।
उम्मीद है इसके बाद आपकी तरफ से अच्छी खबरें सुने डॉक्टर साहिबा।
आपकी मेहरबानी है।
इंशाल्लाह कब काम पर लौट रही हैं?
कल सुबह इसकी भी रिपोर्ट दोगी?
मैं आपका मतलब समझी नहीं डॉक्टर साहिबा।
मैंने तो कोई मुश्किल बात नहीं की, कहा अगर रिपोर्ट देना चाहती हो तो प्लीज कहो कि मैं कल सुबह काम पर आ जाऊंगी।
रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट?
लगता है गलत फहमी हो गई है, अगर तुमने रिपोर्ट नहीं दी तो मैंने भी अभी कुछ नहीं कहा है। बहुत मेहरबानी की आके।
कहा कि डॉक्टर आतिफा आज नहीं आ रही है।
आज उनके वालिद का सेवुम है मर्जबान साहब, आप नहीं जानते थे?
सब कुछ इतना बिगड़ गया है कि मैं तो दिनों का हिसाब ही भूल गया। सेवम का प्रोग्राम कहाँ है?
उनके घर पर।
मैं दादी जान से मिल सकता हूँ या अभी तक मिलना मना है?
देखिए आपकी मरीजा होश हवास में नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन खुद आपके लिए तकलीफ दे होगा। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि मुलाकात का टाइम खत्म होने से पहले ही चले जाइएगा, क्योंकि उस पैकेट के मसले के बाद अस्पताल सलाह नहीं देखता कि टाइम से बाहर अमले के अलावा कोई भी फर्द वार्ड में दाखिल हो।
पैकेट?
क्या डॉक्टर फरजाब ने आपको नहीं बताया था?
क्या चीज?
आजकल अपने वालिद साहब के शोक में ज्यादा है, इस वजह से वो भूल गई हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वो आप उनसे ही सुनिए।
मेरी दादी जान की तबीयत ठीक हो जाएगी?
उनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, उनके लिए दुआ करें।
ये आपके दिल की धड़कन है, सुन रही हैं। कहते हैं कि दिल प्यार और मोहब्बत का मरकज है, क्या आपका दिल भी ऐसा है? आप कैसे इतने साल मुझसे झूठ बोलती रहीं? बचपन से ही सोचता था कि मेरी फैमिली क्यों दूसरों की तरह नहीं है, बगैर किसी मोहब्बत करने वाले मां बाप के। अब समझ में आया कि इतने बरसों तक मैं आपके लिए बहराम की जगह भरता था। दादी जान, जनरल कहते थे कि आप इसमें बामुसम्मा हैं। मेहरबानो, तो फिर इतने साल मुझसे क्यों झूठ बोलती रही? क्यों दादी जान, क्यों? आप भी जनरल से डरती थी?
जी चाहता था कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकूं, लेकिन अफसोस। बहरहाल अगर तुमने मुझे मदद के काबिल समझा तो जरूर फोन करना, जानती हो ना मैं हमेशा तुम्हारा मुंतजर रहता हूं।
आपकी मेहरबानी है इशराक साहब, लेकिन जानते हो कि मैं कभी भी तुमसे मदद नहीं लूंगी। बहरहाल शुक्रिया।
कहां जा रहे हो इराज? रात का खाना हमारे साथ खाओ।
शुक्रिया आंटी जी। मुझे थोड़ा काम है, चलता हूँ।
तो तुम क्यों साथ नहीं जा रही?
मैं मुझे आपके पास रुकना है, जरा घर की सफाई सुथराई करती हूँ, ठीक है?
जी अम्मी, इनको यहाँ पर हेल्प करवाने दें। मैं कितने घंटे बाद आपको लेने के लिए आऊँ मेरी जान? तुम चाहो तो रुक जाता हूँ जब तक तुम्हारा काम खत्म ना हो जाए।
नहीं, आप जाइए प्लीज।
जैसा आप कहें आतिफा साहिबा।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा मुलाकात होगी।
सपन्ता की हालत बिगड़ गई।
मैं माफी चाहता हूं। मैं कोई हेल्प कर सकता हूं?
जी नहीं, बस मुझे आपसे एक माजरत खाही करनी थी।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। आपकी फैमिली का अफसोस है मुझे।
मुझे भी।
अगर मैं ज्यादा एहतियात से काम लेता या स्पीड कम रखता तो शायद यह हादसा पेश ना आता। अभी आप फैमिली के पास होती।
तकदीर का लिखा हो के रहता है। मेहरबानों की तबीयत ठीक है?
नहीं।
उनके लिए दुआ करूंगी।
खुदा हाफिज।
मर्ज़बान साहब, मुझे माफ कर देंगे ना?
आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिसे माफ करूं।
शुक्रिया, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। पारसा साहिबा, कैमरे के लिए शुक्रिया आपका। पहले कभी शुक्रिया का मौका नहीं मिला मुझे।
कोई बात नहीं। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद।
वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं जानते आज कौन सा दिन है?
इसीलिए तो आया हूँ, ताज़ियत देने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अब जाओ यहाँ से।
तुमसे कुछ बात करनी मोहम्मद।
तुम अजीब इंसान हो पुलात। खुदा के लिए इससे पहले कि मेरी बहन आ जाए यहाँ से चले जाओ। तुम्हें देखेगी तो बहुत गुस्सा होगी।
लेकिन मुझे वजाहत करनी है। कसम खाता हूँ, जब मैं अंदर गया तो तुम्हारे वालिद इसी तरह बैठे हुए थे। یقین کرو.
دیکھو میں یہ سب کچھ جانتا ہوں لیکن عاطفہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی, اسے وقت چاہیے. یقین کرو جب
میں ان پر ناراض تھا لیکن جب وہ کمرے میں گئے اس کے بعد میں نے انہیں دیکھا نہیں.
پہلے یہ سب کہہ چکے.
میں ان دنوں سو نہیں پا رہا, مجھے ڈاکٹر عاطفہ کو وضاحت دینی ہے. اس نے میری دادی کی مدد کی, میں نہیں چاہتا وہ یہ سوچے.
میں کچھ نہیں سوچ رہی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم بہت آرام سے ابو کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور
اب مجھے وضاحت کرنے دیں.
سب کچھ واضح ہے, وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں.
مجھے آپ کے والد سے ایک بات پوچھنی تھی, ان سے مجھے کچھ بات کرنی تھی.
ان تکراری باتوں کے کہنے سے کیا فائدہ, میں نے تو پولیس کو کچھ نہیں بتایا. تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟
چاہتا ہوں آپ میری بات کا یقین کریں. یہ تصویر دیکھیے, آپ کے والد میری فیملی کے بارے میں جانتے تھے.
اور تم نے ان کو اتنا غصہ دلایا کہ ان کے دل نے کام چھوڑ دیا. جب سے ہماری زندگی میں آئے ہو سب کچھ خراب ہو گیا.
عاطفہ
مجھے اپنی بات کرنے دو. میری جاب کا تو یہ حال ہے کہ تمہاری چھری کی وجہ سے بار بار سیکیورٹی آفس جا رہی ہوں, اور باپ کی فاتحہ میں سوالات کا جواب دے رہی ہوں اپنے ہی گھر میں.
چھری, میری چھری؟
جی ہاں, اور میری فیملی کا بھی یہ حال ہو گیا.
کم از کم مجھے بتانے دیجئے کہ ہوا کیا ہے.
اور کیا ہونا تھا, میرا باپ تو مر گیا ہے, اس سے برا اور کیا ہوگا.
ارے بہرام صاحب, آپ ہیں, کیا کہنے, یہاں کیسے, بہت خوش آمدید. بیگم کہاں ہے؟
آپ ہاسپٹل میں تھیں, وہاں بھی آپ نے مجھے بہرام کہہ کے بلایا.
آئیے بیٹھیے. پتہ ہے مہربان سر سے, میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی. البتہ جانا صاحب بھی, لیکن تم تو جانتے ہو وہ دل کی بات زبان پر نہیں لاتی. کاش بیگم کو بھی اپنے ساتھ لے آتے. ایک بات بتاؤں, اگرچہ میڈم مہربانوں ان سے بات کرنا نہیں چاہتی لیکن مجھے ان سے بہت پیار ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی عورت ہے. ارے ایوا کتنا پیارا گلدستہ لائے ہیں, بہت بہت شکریہ, ہمیں شرمندہ کیا. لیکن کیوں, ارے بلیک پٹی کیوں لگائی ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے کیا مہرب صاحب؟ یقین کریں میں نے فرجام سے بہت کہا, ان کو کئی دفعہ یاد دلائے لیکن ارے ذرا دکھانا. ہمارے پاس بھی تمہاری فیملی کسی طرح کے ایک تصویر البم میں ہے, لیکن یاد ہی کیوں ہے؟
آپ میری فیملی کو جانتی ہیں؟
ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں بہرام خان, میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں.
آپ مجھے
بس
بتا سکتے
کرو
ہیں؟
کیا تمہیں نہیں معلوم میری ماں بیمار ہے, باپ کے بعد اس کو مارنا چاہتے ہو؟
لیکن میں نہیں چاہتا.
تم کیا میرے خیال میں کافی حد تک ہماری فیملی کا نقصان کر چکے ہو, مزید کیا چاہتے ہو؟ ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ اس گھر سے.
میڈم یہ آپ بہرام صاحب سے کیا کہہ رہی ہیں؟
کچھ نہیں امی جان, پیاری امی میں قربان جاؤں. آئیے چلتے ہیں, ان پھولوں کے لیے کوئی گلدان ڈھونڈتے ہیں, پانی کے بغیر پجمردہ ہو جائیں گے. آئیے میں قربان جاؤں. آ جائیں
پولاد بھائی, پلیز کسی اور وقت بات کرتے.
نہیں کبھی نہیں, اب میں کبھی بھی تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی, سمجھے؟
یقین کرو تمہارے ابو بہت چاہتے تھے کہ ہم دونوں ایک دفعہ پھر سے ایک ساتھ ہو جائیں.
آخر کار کیا ہوگا, میں اور تمہاری ماں تو ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے.
ایک وصیت بھی کی تھی.
مجھے تمہاری فکر ہے.
وہ جانتے تھے کہ میں تم سے کتنا, بہت چاہتے تھے کہ میں تمہیں خوش رکھوں, بہت افسردہ تھے कहा कि तुमसे बात करना चाहते हैं। आखिरी दिन में मुझे फोन किया, बहुत परेशान थे, कह रहे थे कि हम दोनों को दोबारा मिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
आतिफा, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ ठीक हूँ। अम्मी सो गई?
हाँ, बहुत थकी हुई थी, खाना बड़ी मुश्किल से खाया।
हाय हाय,
बहुत सख्त दिन था, तुम बहुत थक गई।
तुम भी
मेरी अजीज बहन, याद है जब छोटे थे और अम्मी अब्बू कहीं जाते थे तो तुम मेरा ख्याल रखती थी, आज रात हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे।
7 साल की उम्र से बिल्कुल नहीं बदले।
और तुम 5 साल की उम्र से?
ज्यादा डंडे मत बनो।
मेरी कसम कहो क्या खाओगी? कुछ सालन बना दूं, बहुत जबरदस्त।
नहीं भाई, बिल्कुल मन नहीं कर रहा।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तुम्हें नहीं पता कि सबसे अहम खाना रात का खाना होता है।
तुम सुधरने वाले नहीं। अरे हाँ मोहम्मद, तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे?
कि तुम दुनिया की सबसे अजीज बहन हो।
बस करो, अब बताओ।
कौन सी बात?
अनजान ना बनो, तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ।
तो क्या आज रात ही कहना जरूरी है, वो भी इन हालात में?
मोहम्मद,
मुझे ये अब्बू की मेज पर मिला है, उनका कलम जमीन पर गिर गया था, यानी आखिरी लम्हे तक उनके हाथ में था। मेरे ख्याल में अब्बू ने मौत से पहले जो आखिरी चीज लिखी है वो यही है।
तो फोन पर बात कर रहे थे?
फोन?
हाँ, उनकी आदत थी जब भी फोन पे बात करते तो कागज पे टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाते।
सच कह रही हो, याद आया।
तो तुम ये कहना चाह रही हो कि इसका कोई मतलब है?
मैं तो हैरान हो गया हूँ। पुलाद कह रहा था कि अब्बू को उसकी फैमिली के बारे में कुछ मालूमात है जो वो नहीं जानता। दादी ने उसे बताया था कि उसकी पैदाइश के बाद उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे, लेकिन फिर उसको अपने बाप के साथ 3 साल की उम्र की तस्वीर दिखाई।
अच्छा, तो इसका अब्बू के साथ क्या ताल्लुक? दादी ने क्यों अपने पोते को सच सच नहीं बता दिया?
लगता है सच बताने ही वाली थी कि अस्पताल में उसकी तबीयत बिगड़ गई।
लेकिन वो उससे झूठ क्यों बोलते थे या उससे क्यों छुपाते थे?
ये देखो, देख रही है उसका बाप कितना उससे मिलता है। अम्मी भी आज उसे उसका बाप समझ रही थी। उसके बाप का नाम था बहराम, जैसे कि अब्बू ने लिखा है।
तुम मोहम्मद, तुम क्या कहना चाह रहे हो?
नहीं जानता आतिफा, लेकिन एक बुरे एहसास ने जहन घेर लिया है। जहन में उनके आखिरी बातें पुलाद की फैमिली के बारे में क्यों थी? अब्बू का उनके साथ क्या ताल्लुक था?
लेकिन आखिर अब्बू,
उन्होंने कभी नहीं बताया कि इस फैमिली के साथ उनका क्या रिश्ता था। हत्ता उस दिन जब मुझे अपने साथ होटल ले गए, हत्ता जब उसकी दादी CCU तक पहुंच गई, याद है अब्बू की हरकतें कितनी अजीब थी।
चलो मान लेते हैं कि अब्बू उस लड़के की फैमिली के बारे में जानते थे, पर क्या कह सकती हूँ, वो बहुत साल पहले जरूर दोस्त रहे होंगे, तो इसमें क्या बुराई है?
पुलाद का कहना है कि उसकी दादी ने कहा है कि सिर्फ मीरकुली उसकी फैमिली के बारे में जानता है, सिर्फ वही जानता है कि कहाँ है। इसी बात पर उस दिन होटल में उनकी तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए पुलाद अब्बू से मिलने पर इसरार रखता था और किसी न किसी तरह से एड्रेस लेके अब्बू के पास पहुंच गया।
अच्छा, तो
नहीं पता, हैरान हूं। इसीलिए तुमसे कहा कि पुलिस को कुछ नहीं बताना।
समझ नहीं
अगर
आ रही,
पुलाद गिरफ्तार हो जाता और मालूम पड़ जाता कि अब्बू ने एक गलती की है तो क्या?
नहीं, अब्बू गलती नहीं करते थे कभी भी।
हम नहीं जानते आतिफा, आखिरी दिनों में उनका रवैया बहुत अजीब सा था। मेरे अकाउंट से रकम निकालना, अस्पताल से डिस्चार्ज करवाना खुद को, ईराज के बारे में सवालात पूछना, ये सब दिखाता है कि अब्बू हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरा तो बस दिमाग जवाब दे गया है, एक तरफ से कारखाने का वो हाल, दूसरी तरफ अम्मी का।
कारखाने को क्या हुआ है?
सब कुछ खत्म हो गया, तमाम दरवाजे खटखटा चुके, जैसे अब्बू के साथ सब कुछ चला गया। हमें दिवालिया होने का ऐलान करना होगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
सलाम।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आप ठीक हैं?
वालेकुम सलाम।
बहुत बहुत खुशामदीद। फरजान साहब अभी नहीं आए हैं, चाहें तो फोन करके आने का टाइम पूछ लेती हूँ।
नहीं, जरूरत नहीं है, जानती हूँ यहाँ नहीं है, उन्हें पता ना चले मैं यहाँ आई थी। ठीक है। और जंद साहब को फोन करके उन्हें यहाँ बुलाओ। शुक्रिया
जी। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जान साहब।
मैं कैसे भला नाराज नहीं होंगी, जैसे मैं कोई गैर हूँ और सबसे आखिर में मुझे मालूम होना चाहिए कारखाना बंद हो रहा है।
मैं आपको तो नहीं बता सकता था, और फरजान साहब भी आपको परेशान नहीं करना चाहते थे।
जरूर सोच रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना?
बहुत कठिन मरहला है डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि हम गलत सोच रहे थे। हाँ, अगर आप जानती तो भी।
आपका मसला कितनी रकम से हल हो सकेगा?
1000-2000 की बात नहीं डॉक्टर साहिबा, बहुत ज्यादा रकम चाहिए, एक कारखाने के चलन का खर्चा है। ये मत सोचे कि अस्पताल से लोन वगैरह से काम चल जाएगा।
वाकई मेरे ख्याल से इसे किसी हद तक मसला हल हो जाएगा।
मैंने अर्ज किया कि नहीं।
इसे खोलिए।
मैडम इतनी सारी रकम
पे भरोसा रखिए जान साहब, आप जानते हैं मोहम्मद ने इस कारखाने के लिए पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, अब्बू के साथ कारखाने के बेचने पे लड़ चुका, आपको भी अपने भाई जैसा मानता है, उसके लिए कारखाने का बंद होना कोई छोटी बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए।
तो आप ये खुद क्यों नहीं उन्हें देती? बहुत खुश हो जाएंगे जब ये देखेंगे कि आप...
मैं आपको ये चेक इसलिए दे रही हूँ कि उसको पता ना चले।
लेकिन डॉक्टर साहब,
जान साहब, ये मेरी वाहिद शर्त और गुजारिश है।
लेकिन क्या वो मुझसे नहीं पूछेंगे कि अचानक इतनी बड़ी रकम कहाँ से आ गई?
तो उसे कहें कि कहीं से कर्जा लिया है या कुछ और?
मैं झूठ नहीं बोल सकता डॉक्टर साहबा, यानी कम से कम मोहम्मद से नहीं।
आप उससे कह सकते हैं कि किसी से कर्ज लिया है, एक ऐसे फर्ज से जिसके लिए कारखाना बहुत अहम है, लेकिन ये नहीं चाहता कि उसका नाम जाहिर हो। रकम लौटाने की भी फिक्र ना करें, हत्ता 10 साल तक अगर ना लुटाई तो कोई बात नहीं, और ये झूठ भी नहीं होगा।
Thank you.
मुझे माफ कर दो बहराम साहब, माफ कर दो, मेरे दो छोटे बच्चे हैं।
तुम्हारी जान से दूर ऐसा लगता है तुम खुद हो। वो दिन खजां का एक ठंडा दिन था। तुम्हारे बाप को खजां का मौसम बहुत पसंद था।
और माँ?
वो भी तुम्हारे बाप की तरह थी। जब जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए, मैंने कहा, फिर उनको कभी नहीं देखा। नहीं, मेरे ख्याल में दरख्त से टकरा गई थी गाड़ी, उन्हें कुरान के नीचे से गुजारा। उनके जाने के बाद कटोरे से पानी फेंका। तुम्हारे मामू और रिश्तेदारों ने उन्हें दफनाया था, मैंने नहीं बताया था।
पता नहीं उनका देखना मेरे नसीब में क्यों नहीं था। आपने उनकी जिंदगी देखी, बचपना, स्कूल, नौजवानी, शादी, हत्ता मौत। जब बहराम का नाम लेती हैं तो आपकी आंखें चमक जाती हैं, लेकिन मेरे जहन में उनकी कोई तस्वीर नहीं है। बाप के बारे में मैंने सिर्फ दूसरों से सुना है, कुछ याद नहीं आता।
सलाम अलैकुम मर्जमान साहब, रात को अच्छा सोए? मैडम मर्जमान की तबीयत ठीक है इंशाल्लाह?
जी शुक्रिया।
बहुत माजत के साथ ये कल आपके लिए लाए थे।
मेरे लिए?
जी, जो ही आप उस खातून के साथ तशरीफ ले गए, माफ कीजिएगा, रात की ड्यूटी का लड़का नया है, रात को आपके आने के बाद आपको देना भूल गया था। चलता हूँ।
ये कौन लाया?
एक नौजवान सा आदमी था।
ओह मेरे खुदा, ओह खुदाया, या अल्लाह।